आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार ने कोरोना रोधी वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट अस्पतालों में क्या है इनकी कीमत। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 44 करोड़ टीकों का ऑर्डर वैक्सीन कंपनियों को दे दिया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। केंद्र ने अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी है। इन खबरों के अलावा मौसम का मिजाज भी बताएंगे आपको आज के पॉडकास्ट में। फिलहाल पहली खबर। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दी है। नए रेट के मुताबिक कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 780 रुपये होगी। इसमें वैक्सीन के एक डोज की कीमत 600 रुपये और 5% GST के अलावा 150 रुपये सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है। वहीं कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1410 रुपये होगी। इसमें 1200 रुपये वैक्सीन की कीमत और 60 रुपया GST के अलावा 150 रुपये सर्विस चार्ज जुड़े होंगे। इसी तरह रूस निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 रुपये प्रति डोज होगा। इसमें 948 रुपये वैक्सीन की कीमत और 47 रुपये GST के अलावा 150 रुपये सर्विस चार्ज जुड़े होंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार निर्धारित रेट को लेकर हर रोज़ इनकी निगरानी की जाएगी। ज़्यादा रेट वसूलने पर प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 150 रुपये सर्विस चार्ज से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें। इनकी निगरानी राज्य सरकारों को करनी है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीका नीति की घोषणा करने के बाद कोरोना रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 44 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दे दिया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र राज्यों के खरीद कोटे को अपने हाथों में ले लेगा और 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को टीके मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दवा निर्माता कंपनियों द्वारा कोरोना रोधी टीकों की इन 44 करोड़ खुराकों की आपूर्ति दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस संदर्भ में एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दे दिया है। इसके लिए दोनों कंपनियों को 30-30% अग्रिम राशि जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार को एक तेज रफ्तार बस लोडर को टक्कर मारने के बाद पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को हैलट अस्पताल भेजा गया है। यह हादसा संचेडी के किसान नगर क्षेत्र में नहर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी प्राइवेट मिनी बस की रफ्तार बहुत तेज थी। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही संचेडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों से घायलों को बाहर निकालते हुए राहत कार्य शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक अभिजीत सांगा ने बताया कि इस हादसे में मारे गए अधिकतर लोग कल्याणपुर ब्लॉक के ईश्वरीगंज और लालपुर गांव के रहने वाले थे। फिलहाल हैलट में 4 घायल भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत नाजुक है। राजस्थान के जालौर में 5 साल की एक बच्ची की मौत भीषण गर्मी में 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी पानी नहीं मिलने की वजह से हो गई। बच्ची की नानी सुखी देवी भी प्यास से बेहोश होकर गिर गई थीं। जालौर के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी देर करते तो सुखी देवी की भी मौत हो जाती। बच्ची अंजलि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने दावा किया कि लंबे समय से पानी नहीं मिलने के कारण बच्ची डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। प्यास की वजह से मौत के मामले में गहलोत सरकार घिर गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। जावड़ेकर ने ट्वीट में लिखा, 9 घंटे तक पानी न मिलने के कारण हुई एक बच्ची की मृत्यु बेहद शर्मनाक घटना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया, राहुल, प्रियंका अब चुप क्यों हैं? ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। बिहार बुधवार यानी आज से अनलॉक हो गया। प्रदेश में दिन भर दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर दुकान खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं, साथ ही दुकान खुलने का समय भी तय कर सकते हैं। ऐसे में अल्टरनेट डे पर पटना में भी दुकानें खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। पटना में दुकानों को जिलाधिकारी ने 3 श्रेणियों में बांटा है। डीएम ने एक एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने की इजाज़त दी है। प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में किराना, सब्जी मंडी, फल अनाज मंडी, उर्वरक, पेट्रोल पंप, पीडीएस, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट, मछली शामिल हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी। इसी तरह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पटना में कपड़े, सोना चांदी, बर्तन, स्पोर्ट्स, ड्राई क्लीनर, जूता चप्पल, बालू गिट्टी सीमेंट आदि की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सभी नियम पूरे राज्य में एक तरह से लागू रहेंगे। अनलॉक में भी पहले की तर्ज पर शादी समारोह से लेकर श्राद्ध कर्म तक में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में अब 25 से बढ़ाकर 50% कर्मियों की उपस्थिति का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों में जहां 50% कर्मी उपस्थित होंगे, वहीं सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर उसका बड़ा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव ने बताया कि मंगलवार को सुल्तानिया अस्पताल के गेट पर नर्सिंग कर्मचारियों ने मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। बुधवार यानी आज से काली पट्टी बांधकर कर्मचारी काम करेंगे। इसके बाद 10 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से हर दिन विरोध दर्ज कराएंगे। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी सालों पुरानी मांगें नहीं मानी तो सभी सरकारी अस्पतालों में 24 जून से वे काम बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। वह 2019 में यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त था। सुशील चंद्रा सीईसी हैं, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के कई हिस्सों में पहुँच चुका है। हालांकि इसके देरी से आने के बाद यह उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि बुधवार और गुरुवार को देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में धूल भरी आंधी चलेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इससे तापमान बढ़ने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार बुधवार को लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गोवा, कोंकण, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई में मंगलवार को कई जगह रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे कई इलाकों में जल जमाव की समस्या भी हुई है। इसे मौसम विभाग ने मानसून से पहले की बारिश कहा है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।